ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चार प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्यसभा के लिए नामांकनों पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पल्ला क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया। रेल विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रख्यात वकील उज्ज्वल देवराव निकम, सामाजिक कार्यकर्ता सदानंद मास्टर, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में इस निर्णय की जानकारी दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन सदस्यों के नामांकन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय समकालीन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में गौरव और विश्वास का अद्वितीय प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में निष्ठा, विद्वता और व्यापक दृष्टि के साथ कार्य किया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन नामित सदस्यों की उपस्थिति से राज्यसभा की गरिमा और वैचारिक समृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाली प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। बधाई संदेश में लिखा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को डॉ. जैन पर गर्व है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पल्ला क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने बोट के माध्यम से जलस्तर और तटीय स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पानी के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने बताया कि राजधानी में यमुना का जल साफ और स्वच्छ करना सरकार का लक्ष्य है।
सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी फ्लड मेजर्स में क्या क्या स्टेप उठाए गए उसके बारे में आज हमने मीटिंग करी। जो यहाँ से हरियाणा से डाउनस्ट्रीम से पानी आता है वो भी हमने उसका सैंपल भी लिया है। तो ये सारे मेजर्स और ये सारे सर्वे हमारे चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार आने वाले मानसून के संबंधित जितने कदम हम लोगों को उठाने चाहिए, डिपार्टमेंट को उठाने चाहिए, मैं पूरे काम से सेटिस्फाइड हूँ कि काम हमारा ठीक गति से चल रहा है। और भी अधिकारियों को बताया गया है, अधिकारी अपने स्तर पर भी जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठा रहे हैं।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि लोगों ने बताया कि नालियों की सफाई होने के कारण इस बार जलभराव नहीं हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जलभराव वाली सड़कों की पहचान कर ली गई है, जिनकी सफाई का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने पर श्री सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि कांवड़ शेड के लिए भी धन मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शाहदरा क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए बनाए गए विशेष ट्रैक पर कांच के टुकड़े पाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्होंने पुलिस और लोक निर्माण विभाग को मौके पर पहुंचकर तुरंत सड़क साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने 2 घंटे के भीतर सड़क को साफ किया। पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। दिल्ली नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और हरित राजधानी के उद्देश्य को लेकर ग्रीन एक्शन प्लान के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक 7 लाख से अधिक पौधे लगाना है।
इस अभियान के तहत 2025 के अंत तक 3 लाख पेड़, 4 लाख झाड़ियां और 3,000 से अधिक बांस के पौधे लगाए जाएंगे। निगम ने बताया कि मॉनसून सीजन में अभियान को गति दी गई है और यह वर्ष भर जारी रहेगा। निगम के अनुसार अभी तक दिल्ली के विभिन्न 12 जोनों में 66,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें 21,000 से अधिक पेड़, 41,000 से अधिक झाड़ियां और लगभग 3,000 बांस के पौधे शामिल हैं। निगम ने बताया कि यह अभियान दिल्ली की हवा को साफ करने, तापमान में कमी लाने और जैव विविधता को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। एमसीडी द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि लगाए गए पौधों की मृत्यु दर न्यूनतम रहे। इसके लिए जल व्यवस्था, बाड़ लगाना और नियमित देखभाल की व्यवस्था भी की गई है। निगम ने शहरवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने और दिल्ली को हरा भरा बनाने में अपना योगदान देने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हुई। ये आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। परंपरा और तकनीक के समागम वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के 500 से अधिक चिकित्सक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और विद्वान शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा में हुई प्रगति और उभरती शैलियों को दर्शाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा और खासकर आयुष पद्धति के साथ यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े जाने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संगठन ने अपनी पहली तकनीकी रिपोर्ट में माना है कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट से इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत तकनीक के इस्तेमाल से पारंपरिक चिकित्सा को आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि वर्ष 2018 में शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म आयुष ग्रिड एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ग्रिड के साथ सही, नमस्ते और आयुष अनुसंधान पोर्टल जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट।
AI संचालित उपचार प्रणालियां नाड़ी मापने और प्रकृति आकलन जैसी पारंपरिक विधियों को मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़कर सटीकता में सुधार कर रही है। आयुर्जिनोमिक्स की पहल रोग संकेत पहचानने और स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के लिए AI का उपयोग कर रही है। इसके अलावा AI हर्बल जीनोमिक और मॉलिक्यूलर आधार को समझने में भी मदद कर रहा है। WHO के दस्तावेज में भारत द्वारा औषधि किस प्रकार कार्य करती है, पारंपरिक प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन और रस, गुण तथा वीर्य जैसे पारंपरिक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए कृत्रिम रासायनिक सेंसर के विकास और पारंपरिक योगों के आधुनिकीकरण में AI के उपयोग को भी मान्यता दी गई है। दस्तावेज में 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार आकार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में आयुष क्षेत्र के योगदान का भी उल्लेख है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
रेल विभाग ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए CCTV कैमरा लगाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में CCTV कैमरा लगाने की प्रगति की समीक्षा की है। कोच में कैमरा लगाने से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इनसे उपद्रवियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यात्रियों के निजता को ध्यान में रखते हुए ये कैमरे बोगियों के दरवाजों के पास लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने सभी 74,000 बोगियों और 15,000 रेल इंजनों में CCTV कैमरा लगाने को मंजूरी दी है। प्रत्येक कोच में 4 डोम टाइप CCTV कैमरा और रेल इंजनों में 6 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने उच्च कोटि के उपकरण लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से AI का उपयोग करने की भी अपील की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री गुप्ता ने उपराष्ट्रपति को विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत चल रही पहल, 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना और विधानसभा को एक विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा का 100 दिनों के कार्यकाल पर विरासत से विकास की ओर नामक बुकलेट भी उपराष्ट्रपति को भेंट की। उपराष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में दिल्ली विधानसभा के इन प्रयासों की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सभी अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिनों के मिशन पर हैं। वे इस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इस यात्रा के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने भारत से संबंधित 7 प्रयोग किए हैं। शुभांशु के पिता शंभु शुक्ला ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे बेहद उत्साहित हैं।
जिसके लिए हम लोग इनते दिन से इंतजार कर रहे थे, अब वो जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ गए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को सक्सल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और कम गुणवत्ता वाली उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। ये पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी और उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही समय पर और उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे सही स्थानों और जरूरत पड़ने पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और FIR दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि आदानों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का आग्रह भी किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी से किसानों के हित में प्रभावी और स्थायी समाधान निकलेगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। इस संस्करण को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और द ग्रेट खली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने रस्सी कूद, जुम्बा और हठ योग जैसी गतिविधियों में भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री खली ने युवाओं को फिटनेस को प्राथमिकता देने और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
अब थोड़ा इंडिया ना बदल रहा है, इंडिया की सोच भी थोड़ी बदल रही है और जो आज यहाँ देखने को जोश मिला बच्चों में, हर बच्चों के पास साइकिल है, दिल्ली घूमेंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भी आप 24 घंटे पे आप एसी पे रहते हैं और थोड़ा अगर पसीना निकालेंगे अपने बॉडी से उसके लिए बहुत अच्छा है साइकिलिंग करता है। तो मैं सभी को एक सलाह दूंगा कि आप साइकिलिंग करिए और सैटरडे संडे को बाहर निकलिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को।
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में इसकी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार, पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ वर्षा जल संचयन के महत्व और जल संरक्षण में इसकी भूमिका पर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से जल संरक्षण, प्रभावी वर्षा जल संचयन प्रणालियों और एक स्थायी भविष्य के लिए उनके महत्व से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चार प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्यसभा के लिए नामांकनों पर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पल्ला क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया। रेल विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में CCTV कैमरा लगाने का फैसला किया। और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 31वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।